महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 20। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें द्वितीय स्थिति बंध अधिकार को देखते हुए हम दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 73 पर आ गए, 73। अंतर की हमारी प्ररूपणा चल रही है और जघन्य बंध का अंतर यानी जघन्य स्थिति बंध का अंतर देख रहे थे हम। पहले हमने ओग में देखा था कि जघन्य स्थिति बंध कहाँ होता है, शपक श्रेणी में, तो उसका अंतर नहीं होगा। और जघन्य का अंतर होगा कि नहीं होगा?
नहीं,
उपशम श्रेणी में होगा।
पर
वहाँ पे भी जगन्य बंध ही नहीं हुआ, अजगन्य का अंतर
उपशम श्रेणी क्या?
उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान में उसका अंतर होगा,
स्थिति बढ़ती
है, वो एक समय से अंतर्मूर्त होगा ओग में। उसके बाद हमने आदेश से सब जगह देखा था, नारकियों की बात, तीर्यंचों की बात। नारकियों में तो जगन्य चौथे गुण स्थान वाले के होगा, सर्व विशुद्ध वाले के होगा, वो जघन्य का अंतर अंतर्मूर्त हो सकता है। नहीं, नारकी में सामान्य नारकियों में असंगी से आया हुआ तो उसके जघन्य का अंतर नहीं होगा।
एक बार असंगी से आया तो दूसरी बार भी असंगी से आ सकता है,
तब तक नारकी की मार्गना रहेगी।
अच्छा, वो
हमें आदेश से देखते हैं, यानी सामान्य नारकी कहो या पहले नरक में तो ये बात घटित होगी, और दूसरे से नीचे के नरकों में क्या होगा, जघन्य किसके होगा, सर्व विशुद्धि वाले के होगा, तो उसके अंतर्मूर्त का अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर अपनी अपनी स्थिति में से कुछ कम, जघन्य किया और अंत में जाके फिर जघन्य किया, इस तरह से हम देख सकते हैं। तीर्यंचों में जघन्य देखने के लिए वो एकेंद्रिय बाद्र एकेंद्रिय पर्याप्त के जघन्य होता है। और जघन्य का अंतर हमने देखा, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर, जघन्य का जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त होता है, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक होता है, सूक्ष्म में चला जाता है कहो या उसके रिटर्न होके फिर वो जघन्य के परिणाम हो जाते हैं। सर्वत्र जघन्य के लिए एक समय से तो अंतर्मूर्त, अन्य मार्गणाओं में देखते हैं। आयु के बात विशेष थी, कल हमने पढ़ी थी 71 पेज पर, 71 पेज और तीर्यंचों की तीसरी लाइन, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुद्र भव, यानी क्षुल्लक भव वाले ने अंत में असंक्षेपाधा काल छोड़कर आयु का बंध करके रुका, दूसरा भव वो टू थर्ड हुए बिना उसका बंध नहीं होगा, पर उसको जघन्य करने के लिए फिर अंत में जाके जघन्य करेगा, तो यहाँ पर भी अंत में, वहां पर भी अंत में, तो एक भव उसमें एक समय कम कर दो। परंतु उत्कृष्ट अंतर की बात देखो, ये विशेषता है यहाँ पर कि आयु के जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग ही होता है, यानी इतने काल के बाद लगातार एकेंद्रिय में रहेगा वो तो जघन्य आयु बंधेगा ही बंधेगा, ये उसका अर्थ होता है। ये बात हमने तीर्यंचों में खास देखी थी।
आयु के जघन्य अंतर्मूर्त प्रमाण के अंत में होगी ना,
असंक्षेपाधा के अंतिम समय में तो मरण होगा, और संक्षेपाध्या तो आबाधा काल को कहेंगे, मिनिमम आबाधा को असंक्षेपाध्या कहा।
तो जब ये आयु
उसके पहले आयु का बंद होके रुका
तभी उसका जघन्य,
जब वो जघन्य अंतर हुआ यानी वो रुका, और फिर दूसरे भव में भी जघन्य बांधना है उसको, वो भी क्षुद्र भव के अंत में जाके उसने आबाधा छोड़कर बांधी, मैंने बांध कर रुका। नहीं
अंतिम आयु के अंतिम समय में आयु के
हाँ जघन्य तब जागे होगा, तो पूरा एक भव और उसमें एक समय कम कर दो। उत्कृष्ट अंतर पल्ले का संख्या तो, और ओघ में लक्ष्मी याद है, ओघ में आयु के जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर हमने कितना देखा था ओघ में, ओघ में
त्रस में भी दो, पर वहाँ पे भी जघन्य अंतर तो हो जाएगा। नहीं त्रस पर्याप्त की हम लोग
पर्याप्त में रखना है, त्रस पर्याप्त और एक इंद्रिय पर्याप्त साधिक 2000 क्योंकि एक इंद्रियों में भी पर्याप्तों में रहने का काल लिया हमने, इस तरह से लेना है उसको। अभी बाकी डिटेल नहीं पढ़ते हम, फिर अभी हम पेज नंबर 72 हमने एक इंद्रियों की बात पूरी, वो तो देवों में मनुष्यों में सब घटित कर दिया था, इतना विशेष था मनुष्यों में कि हमने अजगन्य का अंतर ओघ में एक समय से अंतर्मूर देखा था 11वें गुणस्थान में, और मनुष्य में अगर मनुष्य जो मार्गण है उसमें रखते हुए अजगन्य का अंतर पूरा 11वें का काल लेना पड़ेगा। वो मरकर देव में जाता है वो नहीं कह सकते, उसके मार्गणा बदल जाएगी। अंतर्मूर यानी 6 कर्मों के लिए 11वां गुणस्थान और मोहनीय के लिए 10, 11 और फिर 10, ये उसका अंतर पड़ेगा। अभी हम आते हैं एक इंद्रिय की मार्गणा हमने देख ली थी, उसका विशेषार्थ पढ़ना है। देखो विशेषार्थ यहाँ 73 पेज पर, सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक इंद्रियों में 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, यानी वो शुरुआत में उसने सूक्ष्म के योग्य उसने जघन्य किया है, क्योंकि एक इंद्रियों में जघन्य अगर करेगा तो बादर पर्याप्तों में होता है, और सूक्ष्म में अगर देखना है नहीं, ये सूक्ष्म करने वाला कौन सा है, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त है और वो सूक्ष्म में चला गया इतने लंबे काल तक। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध के उत्कृष्ट अंतरकाल का खुलासा सामान्य तिरियंचों की प्ररूपणा के समय कर ही आए हैं, वो हमने पल्ले के असंख्यात विभाग देखा था वो बात। एकेंद्रीय जीव की उत्कृष्ट भवस्थिति, भवस्थिति ने एक भव 22,000 वर्ष प्रमाण है, इसी से इनके आयु कर्म के अजगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर यानी आयु ही नहीं बांधी साधिक 22,000 वर्ष प्रमाण कहा है।
उसमें 7,000 वर्ष
पहले भव में 1/3 और दूसरा भव पूरा, दोनों ओर अंतर्मूर्त कम कर दो, यानी उनकी बड़ी आयु तो 22,000 वर्ष की है। जहां जहां अनुत्कृष्ट है अजगन्य आयु बंद की बात करते हैं तो एक पूरा भव और 1/3 भव और उसमें अंतर्मूर्त कम कर दो। अब बादर एक इंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, इसी से इनमें 8 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है, यानी शुरुआत में एक बार किया और अंत में जाके एक बार किया। इनके पर्याप्तकों की उत्कृष्ट काय स्थिति संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण, यही कारण है इनके 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण कहा है। जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त होता ही है, जघन्य का जघन्य अंतर, यह उत्कृष्ट अंतर की बात समझाइए। इनके आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध होने पर मरकर ये बादर पर्याप्त नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, जो जो पर्याप्त जीव है वो जघन्य तो स्थिति बांधेंगे, किसकी बांधेंगे, अपर्याप्त की बांधेंगे और वो असंक्षेपदा काल बाकी रहकर बांधेंगे, परंतु वो बांधेंगे तो मरकर अपर्याप्त में चले जाएंगे, तो उनकी मार्गणा नहीं रहेगी, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं होगा। जघन्य बांध सकते हैं, उसका अंतर नहीं होगा। कहते इसी से इनके जघन्य स्थितिबंध के अंतरकाल का निषेध किया है, यानी सभी पर्याप्तों में ऐसा ही समझना। शेष कथन स्पष्ट ही है। बादर एकेंद्रिय नहीं कहा, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त कहा, हाँ सामान्य बादर एकेंद्रियों में
वो पहले समय में होगी,
पहले समय में नहीं होगी, क्योंकि बादर एकेंद्रिय पर्याप्त के सर्व विशुद्ध अवस्था में होता, संकलेश भी और सर्व विशुद्धि भी बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों के होता है, वो पहले समय में वो लब्धि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है उसमें, वहाँ वह उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि नहीं होगी। हाँ देखो शेष कथन स्पष्ट है, किंतु यहाँ और सर्वत्र इतना विशेष समझना चाहिए कि जहाँ जिसकी काय स्थिति आदि प्रमाण अंतरकाल कहा है, वहाँ उस स्थिति के प्रारंभ और अंत में विवक्षित स्थिति का बंध कराकर, प्रारंभ लेने उसको जन्मते ही नहीं लेना, यथायोग्य जब करेगा उसकी बात है, इस प्रकार अंतरकाल ले आवे। यहाँ तो हमने कल जो पढ़ा था उसका विशेषार्थ यहाँ हमने देख लिया है। अब द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में यहाँ सातों चाहिए, सातों कर्मों की, यहाँ आठों लिखो है, ऊपर क्या लिखा है, अठन्नम कब्माणम, क्योंकि आयु के बात अलग से बताई है,
उत्कृष्ट के समान बताया ना, तो वो हम पे आठों कर्म का उत्कृष्ट के समान बताया, तो उत्कृष्ट आयु का था वो यहाँ पे भी
देखते हैं। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जीवों में आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल उत्कृष्ट के समान है, और देखो 62 पेज का हमने रेफरेंस लिखा है लास्ट टाइम, उत्कृष्ट में देखो, उत्कृष्ट का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर संख्या 1000 वर्ष काय स्थिति, यानी ये जघन्य के लिए हो जाएगा। अब अजघन्य अनुत्कृष्ट के समान होगा, वो कब होगा, जब उत्कृष्ट सॉरी जघन्य बांध रहा है तो अजघन्य का अंतर होगा, यानी एक समय से अंतर्मूर्त होगा, वो तो सर्वत्र होता है, अजघन्य का उतना ही होता है, हम उत्कृष्ट के समान कहा है ना, उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ अठन्नम का हमने चेंज किया था लास्ट टाइम, हाँ परंतु सत्तन्नम होना चाहिए था, क्योंकि आयु की बात अलग से बता रही उन्होंने, क्योंकि वहां आयु का क्या है, देखो उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर क्रम से एक समय कम 12 वर्ष है, और यहाँ आयु कर्म के भोग के समान है, यानी एक शुद्र भव होना
उत्कृष्ट के लिए तो 12 वर्ष हो जाएगा ना,
उत्कृष्ट के लिए 12 वर्ष होगा, पर यहाँ आयु में ये वो भोग का जघन्य के लिए, इसलिए वो आठों कर्मों का समान है ऐसा लिखा, वो बराबर नहीं, सातों कर्मों के लिए बराबर है, ऊपर जो अठन्नम लिखा है प्राकृत में वहां सत्तन्नम करना, सत्तन्नम क्या क्या 117 में आठों का लिखा है, उसके बाद सातों करना हिंदी में, और प्राकृत में सत्तन्नम करना, वहां आयु के उत्कृष्ट बंध का जो हमने देखा था तो एक समय कम 12 वर्ष वगैरह देखा था, यहाँ जघन्य का लेना है, तो जघन्य कौन करेगा, द्विंद्रिय अपर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त का करेगा, तो जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर का लोक के समान है, यानी एक समय कम क्षुद्र भव, यही योग में था ना, और उत्कृष्ट अंतरकाल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यानी द्विंद्रियों की स्थिति, तीन्द्रियों की स्थिति, ना ना वो एक भव स्थिति हुआ, यहाँ काय स्थिति लेना है, संख्यात हजार वर्ष लेना है। द्विंद्रिय भी संख्यात हजार वर्ष और द्विंद्रिय पर्याप्त भी संख्यात हजार वर्ष हो गए ना,
दोनों
संख्यात हजार वर्ष हो गए। अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, आगे बढ़ते। अजघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल अनुत्कृष्ट के समान है, अजघन्य का जघन्य अंतर और अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर।
तो समय
एक समय कम 12 वर्ष वगैरह वगैरह होगा। नहीं, अजघन्य का जघन्य अंतरकाल
में
नहीं, पर जो अंतिम समय में जघन्य हुआ उसके एक समय पहले तो अजघन्य होगा, परंतु यहाँ देखो 62 पेज पर हमने देखा था अनुत्कृष्ट जघन्य अंतर अंतर्मूत बताया था, यानी दो अपकर्ष के बीच में लेना और उत्कृष्ट अंतर क्रम से, यानी शादी 12 वर्ष ने पहले भव वन एंड वन वन थर्ड भव लेना। फिर से देखो हमारे पेज 73 पर हम देख रहे थे कि वहां हमने ये बात पढ़ी थी, अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल अनुत्कृष्ट के समान है, यानी जघन्य अंतर अंतर्मूर्त दो अपकर्ष के बीच और उत्कृष्ट अंतर वन एंड वन थर्ड भव
कुछ
अजघन्य में माइनस अंतर्मूर्त कर देना, यानी अजघन्य ने उत्कृष्ट भी अजघन्य कहलाएगा। तो 12 वर्ष वाले ने 4 वर्ष बाकी थे तब उसने आयु बांधी, कितनी बांधी, द्विंद्रिय की उत्कृष्ट बांधी, उत्कृष्ट है वो अजघन्य कहलाएगी, दूसरे भव में लास्ट में जाके बांधे तो 12 4 16 यानी साधिक 12 वर्ष कहेंगे हम उसको, आयु ही नहीं बांधे, वन एंड वन थर्ड भव साधिक एक भव कहेंगे, परंतु उसमें साधिक में वन थर्ड एक्स्ट्रा करना और दोनों ओर उसमें अंतर्मूर्त माइनस कर देना। जघन्य अंतर्मूर्त यानी दो अपकर्ष के बीच वाला, वो भी लब्धि पर्याप्त के दो अपकर्ष बना उसके बीच वाला अंतर्मूर्त होगा वहां पर। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। देखो पर्याप्त में विशेषता क्या है, इनके आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो जघन्य स्थिति बांधेंगे तो लब्धि पर्याप्त की बांधेंगे और पर्याप्त वाले मार्गणा नहीं रहेगी, यानी वो बांध तो सकते हैं परंतु फिर मरकर तो उनके अपर्याप्त में चले जाएंगे। विशेषार्थ, द्विंद्रिय आदि पर्याप्त कों के जघन्य आयु क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण बनती है, जिससे वे भवांतर में पर्याप्त नहीं रहते, इससे इनमें जघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं उपलब्ध होता। यही कारण है इनमें आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध के अंतरकाल का निषेध किया है। बांधते तो है
पर अंतर नहीं,
हाँ, अंतर नहीं होगा। शेष कथन स्पष्ट है, कितने समय तक बांधेंगे जगन,
एक समय।
हाँ, अब इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रियों की बात करेंगे। द्विंद्रिय आदि की बात हो गई, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल ओग के समान है। प्रेरणा बेन आप बताएंगे, अश्विन भाई आप शांति रखो जरा, पहले जघन्य का अंतर कहो, पंचेंद्रिय में त्रस में, त्रस पर्याप्त में, पंचेंद्रिय पर्याप्त में,
पंचेंद्रिय का अंतर चाहिए,
पंचेंद्रिय का अंतर नहीं चाहिए, पंचेंद्रिय जीवों में जघन्य स्थिति बंध का अंतर चाहिए। काय स्थिति नहीं पूछी, जघन्य स्थिति बंध करते हैं तो दोबारा लौट कर कब करेंगे? अरे जघन्य करेंगे दसवें गुण स्थान में, शपक में, तो दोबारा कैसे करेंगे? वो अजघन्य हुआ। देखो देखो, उपशम श्रेणी में तो डबल होता है एक शपक से, वो अजघन्य कहेंगे हम, जघन्य का अंतर नहीं है, ये ओघ के समान है। ओघ में ऐसा ही देखा था, ओघ में भी शपक श्रेणी में जघन्य बताया था, और अजघन्य के वो पंचेंद्रिय की तो होगा, अजघन्य के लिए
अंतर में एक समय अंतर,
एक समय भी होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय मरकर देव में जाएगा तो भी पंचेंद्रिय रहेगा, केवल मनुष्य गति वाले मार्गणा में हमने पूरा अंतर्मूर्त रखा था। यहाँ मार्गणा अपनी चल रही है, पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर का लोक के समान है। जघन्य का क्या कहेंगे? अंतर नहीं है, और अजघन्य का
एक समय
से अंतर्मूर्त। समझ में आती है बात? अब आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है, परंतु वो सामान्य पंचेंद्रियों में कहेंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में अंतर नहीं होगा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति कितने देखी थी हमने? हजार सागर में पर्याप्त, पर्याप्त सब है, हजार सागर में पूर्व कोटि पृथक, पर्याप्त में हमको अंतर ही नहीं देखना है, आयु का जघन्य का अंतर ही नहीं होगा पर्याप्त में, सौ सागर पृथक। हाँ पृथक तो का अर्थ है नौ, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम उनकी जो हम समझाने के लिए मैक्सिमम 900 सागर बताते हैं, परंतु पृथक तो 100 सागर कहना योग्य है। देखो आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल एक समय कम क्षुद्र भव, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाणे, पंचेंद्रियों में हजार सागर और पूर्व कोटि पृथक, पंचेंद्रिय पर्याप्त में तो जघन्य का अंतर ही नहीं होगा, अजघन्य का होगा, परंतु वो तो बाद में देखेंगे। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, न त्रस पर्याप्त में होगा, न पंचेंद्रिय पर्याप्त में होगा। तो त्रस इन जनरल लेंगे उसमें होगा, पंचेंद्रिय इन जनरल लेंगे उसमें होगा, क्योंकि उसमें अपर्याप्त जीव होते हैं।
ये पर्याप्त में अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना हो जाएगा?
फिर से
पर्याप्त में,
पर्याप्त में
आयु कर्म के
कौन से पर्याप्त जीव ले रहे हैं? पंचेंद्रिय,
पंचेंद्रिय,
पंचेंद्रिय पर्याप्त। हाँ अभी आपको ही डिराइव करना है, आप अजघन्य की बात कर रहे हैं,
अजघन्य
अजघन्य बोलो अभी। हाँ क्योंकि वंतर पूर्व कोटि बाकी था, तब उसने 33 सागर की आयु बांधी, तो 33 सागर वाले भव में जाके अंत में जाके अंतर्मूर्त कम था, तब जाके उसने आयु बांधी। तो हमने देखा ना वन एंड वन थर्ड, परंतु वो वन भव तो देव का हुआ या नारकी का, और वन थर्ड भव तो पूर्व कोटि का हुआ। एक ही वो द्विंद्रिय वगैरह में क्या द्विंद्रिय से द्विंद्रिय रखना था, यहाँ पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पर उसमें तो चारों गति पंचेंद्रिय में आ सकती है, इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय का भव यानी मनुष्य तिरेंचों का पूर्व कोटि का वन थर्ड लेना, और वहाँ पूरा भव यानी 33 सागर वाला लेना,
नारकी का लेना। नारकी का लेना
क्यों?
क्योंकि देव तो 33 सागर वाला मोक्ष जाएगा ना,
मोक्ष जाने के पहले आयु बांधेगा कि नहीं?
नहीं बांधेगा, मोक्ष जाएगा।
33 सागर वाला आयु नहीं बांधेगा,
देव बांधेगा।
आप आए नहीं इतने दिन, हमको कोई मजा नहीं आती थी। हाँ समझ में आती है बाती। हाँ तथा सबके और जगन्य स्थितिबंध का अंतरकाल ओग के समान है। ओग में यही देखा था क्योंकि ओग की अपेक्षा उत्कृष्ट यही अंतर था। यहाँ वंथर पूर्व कोटी और वहाँ तेतीस सागर, उसमें अंतर्मुर्त कम। विशेषार्थ पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति, पूर्व कोटी पृथक्त्व अधिक 1000 सागर है। पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की उत्कृष्ट काय स्थिति 100 सागर पृथक्त्व है। त्रस्कायिकों की, त्रस्कायिक एक शब्द है, उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटी पृथक्त्व अधिक 2000 सागर है ना, यहाँ पर लिखा है ना। और त्रस्कायिक पर्याप्तकों की उत्कृष्ट काय स्थिति 2000 सागर है। इसे ध्यान में रखकर, अभी पर्याप्तों की काय स्थिति से कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि वो जगह ने बांधते तो अपर्याप्त में चले जाते हैं। इन चारों में आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल ले आना चाहिए। इनके पर्याप्तकों में आयु कर्म के जगन्य स्थितिबंध के अंतरकाल के निषेध का वही कारण है जो द्विंदी आदि पर्याप्तकों में अंतरकाल का कथन करते समय बतला आए है, शेष कथन सुगम है। यानी उनकी मार्गणा ही बदल जाएगी, वो अपर्याप्तों में जन्म लेंगे। अब यहाँ काय मार्गणा बताएंगे। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवों में 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल उत्कृष्ट के समान है। यानी वो तो सब में तो असंख्यात लोक होगा और वनस्पति प्रत्येक शरीर में तो वो बादर ही होते हैं ना।
वनस्पति प्रत्येक में भी बादर को जघन्य होगा
ना, पर वो तो कर्म स्थिति प्रमाण होगा। 63 पेज पर हमने देखा था, देखो वनस्पति प्रत्येक शरीर वाली है ना। देखो पृथ्वी कायिक वगैरह वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों में उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण बताया था। और प्रत्येक वनस्पति कायिकों में उत्कृष्ट अंतर उनकी काय स्थिति प्रमाण ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर बताया था। मैंने पढ़ा है ना हमने, यानी इनमें से वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर में, हाँ वो 70 कोड़ा कोड़ी है, वही बात यहाँ लेनी है। यानी उत्कृष्ट के समान है ना, अपना अपना उत्कृष्ट के, बाकी सबके लिए असंख्यात लोक था और वनस्पति प्रत्येक शरीर के लिए कर्म स्थिति प्रमाण 70 कोड़ा कोड़ी।
तो हमने जो आयु कर लो उत्कृष्ट अंतर,
यहाँ आयु की बात नहीं है, 7 कर्मों की बात है।
नहीं मैं आयु का अलग से पूछ रहा हूँ।
हाँ
तो इसे नियम हो जाता है कि पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल जाने के पश्चात कोई भी जीव अपर्याप्त में उत्पन्न होगा ही।
हाँ
हमने देखा
जघन्य आयु तो जघन्य का आयु का बंद करेगा ही,
तो वो अपर्याप्त में जाएगा पल्ले के असंख्यात विभाग काल के पश्चात। तो किसी पंचेंद्रिय की स्थिति हम लोग जो लेते हैं
फिर से
पर्याप्त पंचेंद्रिय की नौतों
का वो एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल लिया। यहाँ पर तीर्यंचों में और अन्यत्र जो ये पल्ले के असंख्यात विभाग काल बताया था वो लगातार एकेंद्रियों में रहने की अपेक्षा से बताया था। वो बात हमने कल आपको बताई थी ना, 400 कई पेज पर हमने देखा था, देखो लगातार वहां रहने की बात थी, कल पढ़कर बताया था हमने, पेज नंबर 408 पर था। लगातार जो एकेंद्रिय में रहता है
वो
पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में जगन्य स्थिति बंद करेगा।
पर त्रस्त में इसे नहीं है, भोग में तो इसे बता दिया, तो त्रस्त में भी वो ही ले सकते हैं ना।
तो रस में तो उसने अपर्याप्त का बंद ही नहीं किया, ऐसे 2000 सागर हो सकते पर्याप्त उनकी उत्कृष्ट स्थिति।
अपर्याप्त का बंद करेगा तो वो भी जगन्यायु का बंद कर सकता है ना?
करेगा ही, ये जरूरी नहीं है।
नहीं, जगन्य त्रस भी जगन्यायु का बंद कर सकता है।
कर सकता है
हाँ।
और उसका अंतर्घटित करना है।
नहीं तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि त्रस की शिकायत से हम लोग ने 2000 सागर देखे, तो 2000 सागर में वो पलय का संख्या तो पांच प्रमाण काल।
ये लगातार एक केंद्रीय की मैं कब से बता रही हूँ, लगातार एक केंद्रीय में रहने वाले युवाओं के लिए ये रूल है।
अच्छा, त्रस की
अब त्रस का एक की बात आएगी तब उनकी बात करेंगे, अभी तो हम पृथ्वी का एक वगैरह की बात देख रहे हैं ना। तो पल्ले का असंख्यात भाग हो गया। इनके पर्याप्त को में आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध का अंतर नहीं है, क्योंकि जगन्य बंध करेंगे तो चले जाएंगे अपर्याप्त में। अजगन्य स्थिति बंध का अंतर प्रकृति बंध के अंतर के समान है। प्रकृति अजगन्य का अंतर लेना है तो दो अपकर्ष के बीच यानी मिनिमम अंतर अंतर्मूल, जगन्य अंतर अंतर्मूल, और उत्कृष्ट अंतर जो देखना है। अभी किस में लेना है हमको, पृथ्वी का एक में है तो 22 1 1/3 भाव करना पड़ेगा, कुछ कम, यानी उसको एक भाव को साधिक करके बताएंगे। पृथ्वी का एक में हम साधिक 22,000 कहेंगे, जल कायिक में
साधिक 7,000,
साधिक
7,000,
अग्नि कायिक में साधिक 3 रात 3, वायु कायिक में साधिक 3,000, वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में साधिक 10,000। तो देखो इनके अजगण्य स्थितिबंध का अंतर बताया हमें, निगोद जीवों में, निगोद की बात अलग बता रहे, 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल एकेंद्रियों के समान है। यानी जघन्य का जघन्य अंतर कितना होगा, अंतर मुहूर्त में दोबारा जघन्य कर सकते, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक होगा, असंख्यात लोक किसके लिए, निगोद के लिए, बादर निगोद के लिए लिखा होगा आपने। हाँ, निगोद में रहने का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है, उसमें जैसे उत्कृष्ट का अंतर असंख्यात लोक कहा, वैसे जघन्य का भी अंतर असंख्यात लोक होता है। अजघन्य स्थितिबंध का अंतर एक इंद्रियों के समान, अजघन्य में क्या लेना, एक समय से अंतर्मूर्त जब वो जगन्य कर रहा है तब अजगन्य का अंतर होगा।
नहीं, यहाँ पे निगोद में है जगन्य स्थिति बंध का जगन्य अंतर्भूत बताया और उत्कृष्ट अंतर कर्म स्थिति प्रमाण यहाँ पे लिखा है।
बादर निगोद में होगा।
अच्छा, वो बादर निगोद में,
मैं निगोद पढ़ रही हूँ कब से, अब अच्छा, दोनों ही बादर निगोद में चले गए।
हाँ।
चले गए ने?
हाँ,
उसको लगाया। फिर से पढ़ती हूँ निगोद की बात, केवल निगोद यानी सामान्य से निगोद जीवों में 7 कर्मों के जगन्य और अजगन्य स्थितिबंध का अंतरकाल एकेंद्रियों के समान है। एकेंद्रियों में क्या देखते हैं, जगन्य का अंतर कितना है, अंतर्मूर्त मिनिमम, और उत्कृष्ट असंख्यात लोक। अभी कायिकों में हमने ऐसा ही लगाया था। और अजगन्य का एक समय से अंतर्मूर्त तथा आयु कर्म के जगन्य और अजगन्य स्थितिबंध का अंतरकाल सूक्ष्म एकेंद्रियों के समान है। आयु के जघन्य का जघन्य अंतर कितना होता है, एक समय कम क्षुद्रभ, और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, अंगुल का संख्या होगा। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त जो दो अपकर्ष के बीच वाला होगा, और उत्कृष्ट अंतर
एक भाव साधिक एक,
हाँ साधिक एक भाव यानी 1 1/3। अब बादर निगोद जीवों में, यहाँ बादर निगोद लिया, जैसे बादर एकेंद्रियों में अंगुल का असंख्यात भाग होता है वैसे बादर निगोद की काय स्थिति उतनी है। 7 कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त यानी अंतर्मूर्त में लौट कर फिर जघन्य किया उसने। और उत्कृष्ट अंतरकाल कर्म स्थिति प्रमाण है, ये उसकी काय स्थिति कर्म स्थिति प्रमाण है, ये 70 कोड़ा कोड़ी सा। अब अजगन्य स्थिति बंध का अंतरकाल ओघ के समान है, 7 कर्मों के अजगन्य का, यानी एक समय से अंतर्मूर्त। अब बादल निगो धीमी है, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण, क्योंकि बादर निगोद कहने से पर्याप्त भी हो गए और अपर्याप्त भी हो गए, इसलिए अपर्याप्त का जो भव उसने बंद किया उसका एक भव लेना पूरा, उसमें एक समय कम करना है। और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी इतने काल तक उसने क्षुद्र की आयु नहीं बांधी, ये उसका अर्थ होता है। बाद में वो नियम से बांधेगा ही बांधेगा। मेरे ख्याल से हमने बहुत बार क्षपित कर्मांशिक में बादर पर्याप्तों में पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक रहा वगैरह वगैरह बातें देखी थी शायद, मैंने वो अपर्याप्त में नहीं गया ऐसी बात हुआ, बहुत बार हमने पढ़ी थी बात, उससे इसका कुछ लेना देना होगा। तथा अजगन्य स्थिति बंद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, अजगन्य का जगन्य अंतर दो अपकर्ष के बीच होगा और अजगन्य का उत्कृष्ट अंतर एक भव और वन थर्ड भव, यानी साधिक एक भव, परंतु निगोदों का साधिक एक भव जो कहेंगे वो भी अंतर्मूर्त का ही होगा। अब बादर निगोद पर्याप्त जीव में आठों कर्मों के जगन्य और अजगन्य स्थिति बंध का अंतरकाल बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है, पर्याप्त है तो जघन्य का अंतर नहीं होगा, ये बात मूल आयु के जघन्य का अंतर नहीं होगा,
बाकी का
होगा। 7 कर्मों के जघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट अंतर बादर निगोद पर्याप्तों में रहने का, जैसे एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में रहने का काल कितना देखते हम, उपद बता है ना, एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय पर्याप्त संख्या 1000 वर्ष कितना दिया था,
बादर एकेंद्रिय में ज्यादा हो जाएगा,
बादर एकेंद्रिय ने बादर एकेंद्रिय पर्याप्त संख्या 1000 वर्ष, बादर निगोद पर्याप्त है ना, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है।
पर्याप्त निगोद की भी उत्कृष्ट आयु तो
बादर
बादर निगोद की पर्याप्त आयु भी उत्कृष्ट और अंतर्मूर्त प्रमाण में होगी,
कितनी होगी
बादर निगोद
निगोद बादर हो पर्याप्त हो अपर्याप्त हो अंतर्मूर्त ही है, उससे ज्यादा नहीं,
और वो पर्याप्त
पर उसकी काय स्थिति हम देख रहे
संख्या तक
अन्य बादर एकेंद्रिय के समान होती है संख्या 1000 वर्ष, ख्याल में आती बात ये। यानी वहां सबके लिए वो संख्या 1000 वर्ष नहीं लगाना, आयु की बात मादरी के लिए पर्याप्त के समान ही होगी, जैसे जगन्य का तो अंतर नहीं होगा और अजगन्य का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त होगा और अजगन्य का उत्कृष्ट अंतर साधिक एक भव होगा, यानी अंतर्मूर्त ही होगा, परंतु अंतर्मूर्त क्यों है वो हमको समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म निगोद जीवों में सूक्ष्म निगोद इन जनरल चल रहा है, पर्याप्त पर्याप्त दोनों मिलकर काय स्थिति असंख्यात लोक होते हैं, फिर भी हमने देखा था उत्कृष्ट हो या जघन्य हो उसका उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात विभाग होता है। देखो सूक्ष्म निगोद जीवों में 7 कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये सूक्ष्म की खास 7 कर्मों के लिए खास खासियत है अंगुल का असंख्यात, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भव, क्योंकि सूक्ष्म निगोद इन जनरल चल रही बात, और उत्कृष्ट अंतर पल्ल के असंख्यात वे भाग प्रमाण, किसी भी एक इंद्रिय में लगातार आप बादर एक इंद्रिय कहो, सूक्ष्म एक इंद्रिय कहो, सामान्य एक इंद्रिय कहो, आयु के जघन्य स्थिति बंध का उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग है, यानी इतने काल के बाद वो नियम से उस पर्याय वाले अपर्याप्त में चला जाएगा।
तो वादी को पर्याप्त उत्कृष्ट हम लोग पल्ले के असंख्यात एक जीव की अपेक्षा बादल बहुत पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात प्रभाग है।
हाँ, और अपर्याप्त में तो अंतर्मूर्त ही रह सकता है,
अपर्याप्त में अंतर्मूर्त रहेगा, पर पर्याप्त में बादल विगोद पर्याप्त की काई स्थिति हम लोग को पल्ले का असंख्या प्रभाव लेना पड़ेगा।
हाँ, ऐसा लगता है यहाँ पर। क्योंकि वो नियम से बांधेगा ना क्षुद्र वो जगन्य आयु बांधेगा।
हाँ, तो
या ऐसा भी लेगा कि जगन्य आयु वो कब कहेंगे तो असंक्षेपादा बांधने वाली जगन्य आयु, ऐसा भी ले सकते हैं उसको।
तो
वो आबादा की भी कंडीशन लगेगी ना।
हाँ,
उसके अंदर
पर इससे तो घटित ऐसे ही होता है ना कि पर्याप्त
वो, पर अगर उसकी उसकी बात करेंगे तो इतने काल के बाद तो जरूर बांधेगा, जगन्य भी बांधेगा।
हाँ,
तो अन्यथा भी ले सकते उसके लिए। यानी लगातार एक में रहने वाला जीव पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में जरूर लब्धि अपर्याप्त में जाएगा। वैसे हम एक एक भव लेते थे ना, सूक्ष्म पर्याप्त में एक भव अंतर्मूर्त, अपर्याप्त का एक भव अंतर्मूर्त,
और असंख्यात
वैसे हम बादर एक इंद्रियों का भी काय स्थिति कितने देखते थे, अंगुल का असंख्यात अभाग देखते थे।
तो विगोद में हम लोग जो राहित उत्कल परावर्तन देते हैं उसमें सूक्ष्म बादर होते रहेगा।
फिर से
निगोद में,
निगोद में निगोद की जो है तो बादर भी लेना और सूक्ष्म भी लेना और पर्याप्त भी लेना अपर्याप्त भी।
निगोद में जो ढाई फुट का परावर्तन घूमता है
बादर, निगोद पर्याप्त में लगातार रहा तो संख्यात हजार वर्ष, बादर निगोद में लगातार रहा
अंगुल का संख्यात,
अंगुल का संख्यात होगा,
और विगोद में रहने का ढाई फुट का परावर्तन।
देखो बादर निगोद पर्याप्त या एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय पर्याप्त
संख्यात।
हाँ, पर यहाँ तो और यहाँ पल्ल का असंख्यात भाग लिया, परंतु उसमें वो जघन्य स्थिति बांधने की अपेक्षा है, अपर्याप्त का भव करेगा परंतु जघन्य स्थिति बांधने के लिए वो कंडीशन डाली।
जघन्य के लिए?
हाँ, जघन्य के लिए कंडीशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो एक इंद्रिय पर्याप्त में रहने का भी संख्यात हजार वर्ष ही हो जाएगा ना। एक इंद्रिय पर्याप्त में रहने का उसकी काई से
एक इंद्रिय पर्याप्त कह रहे कि बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कह रहे हैं?
एक इंद्रिय पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल कितना हो जाएगा?
एक इंद्रिय में भी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में तो जघन्य स्थिति बंधेगी बंधेगी ना। एक इंद्रिय में भी हमने तिर्यंचो में भी ऐसा लिया था, ये लगातार एक इंद्रिय में रहा तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल में उसने क्षुल्लक
हो
अपर्याप्त की आयु बंधेगी बंधेगी।
बताया
एकेंद्रिय पर्याप्त, अकेला एकेंद्रिय पर्याप्त। एकेंद्रिय बादर पर्याप्त लिया है, एकेंद्रिय सामान्य पर्याप्त।
पहले का संख्या था नहीं, एकेंद्रिय पर्याप्त में तो संख्या था चार वस्तु।
एक जीव की अपेक्षा सामान्य से एकेंद्रिय पर्याप्त, संख्या सहस्र वर्ष लिया।
संख्या था
चार वर्ष, और एकेंद्रिय बादर पर्याप्त में भी ऐसा ही लिया है, संख्या हजार वर्ष। दोनों के लिए संख्या हजार वर्ष लिया।
संख्या का जब उसके पश्चात वो अपर्याप्त में जाएगा, पर जगन्य आयु के साथ लब्ध्य पर्याप्त में वो जगन्य आयु के साथ जाएगा तो पल्य का पश्चात वो बात का।
यहाँ संख्या का हजार वर्ष कहते हैं, तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में अगर हमको लगाना है जगन्य का अंतर, पर्याप्त में तो होता ही नहीं है।
नहीं, अंतर ही नहीं होगा,
सामान्य में ही अंतर होगा, पर्याप्त में नहीं होगा। पहले बताया था ना, वो पर्याप्त अंतर बंद तो कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हम 74 पेज पर हम पढ़ रहे थे।
पैसे ले सकते हैं,
उत्कृष्ट अंतर
तो वो कल्याण के असंख्य पर जाने के पश्चात वो असंख्य पाता में बंद करेगा,
असंक्षेपादा का और क्षुल्लक भोग
करेगा।
अकेला असंक्षेपादा का नहीं लेना, असंक्षेपादा विच क्षुल्लक भोग। हाँ, उत्कृष्ट अंतर हमने देखा पल्लक के असंख्यात। नीचे से दो तीन लाइन रही गई है 74 पेज के, वो 119 वाले पैराग्राफ। तथा अजगण्य स्थितिबंध का अंतर अनुत्कृष्ट के समान है। अंतर्मूर से 1⅓ भोग, वो भी अंतर्मूर्त होगा। सूक्ष्म निगोद पर्याप्त को में आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों के समान है।
पर्याप्त में
सूक्ष्म निगोद पर्याप्त कहो या सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त कहो, आठों कर्मों का अलग अलग लेना है। यानी सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का अंतर कितना होगा?
जगन्य अंतर अंतर्मूल,
अंतर्मूल
और उत्कृष्ट अंतर पत्नी काय स्थिति,
उसकी अपनी। हाँ,
काय स्थिति
पेज नंबर 72। यानी जगन्य का जगन्य और उत्कृष्ट भी अंतर अंतर्मूर्त होता है। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में उन्होंने अपर्याप्तकों के समान बताया था, और अजगण्य का एक समय से अंतर्मूर्त बताया था। अभी कौन सा पेज निकला? सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों की उत्कृष्ट काय स्थिति कितने देखी थी? एकेंद्रिय सामान्य सूक्ष्म, सामान्य सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त अंतर्मूर्त ही है,
अंतर्मूर्त ही है।
एकेंद्रिय सूक्ष्म
पर्याप्त अपर्याप्त भी
है। हाँ, अंतर्मूर्त, और दोनों मिलकर असंख्यात लोग होते हैं। तो सूक्ष्म निगोद जब लिया हमने, पर्याप्त में भी अंतर्मूर्त अपर्याप्त में भी अंतर्मूर्त, फिर भी जो उत्कृष्ट अंतर अंगुल का असंख्यात्वा भाग लिया वो सामान्य में लिया सात कर्मों के लिए, और आयु के लिए भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग तो लिया ही था,
वो सामान्य में लिया ना।
सामान्य लिया
बाकी पर्याप्त पर्याप्त तो कैसे के अंतर्भूत है ना।
अच्छा तो, पर्याप्त पर्याप्त में जाता रहा।
हाँ।
और उसने जघन्य बंद जब पल्ले के असंख्यात भाग काल के बाद किया। अभी आगे बढ़ेंगे। पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी जीवों में आठ कर्मों के यानी सात और आयु की अलग अलग बात करेंगे। जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर काल नहीं है क्योंकि जघन्य कब होता है तो अंतिम स्थितिबंध जो दसवें में कहो या नौवें में मोहनीय के है उसी योग के रहते हुए दोबारा तो वो तो जघन्य होना होगा तो जघन्य का अंतर नहीं। अजघन्य का अंतर अन्यत्र हम घटित करते थे कि दसवें से ग्यारहवें में गया तो अजघन्य का अंतर शुरू हुआ पर ग्यारहवें में उसके कितने बार योग पलटेगा इसलिए उसका अंतर नहीं होगा। जघन्य कर तो सकता है पर अंतर नहीं होगा। इसी प्रकार 65 पेज पर हमने कुछ करेक्शन किया था ना इसको वहाँ उन्होंने विशेषार्थ में कुछ गड़बड़ी हो गई थी ना उपशम श्रेणी पर चढ़कर पुनः उतर कर वो हमने जो उसमें लाइन निकाल दी थी दो लाइन याद आए कि नहीं थे आप। हाँ अश्विन भाई पेज नंबर 65 पर हाँ देखो देखो यहाँ क्या लिखा है जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर नहीं है। अब वहाँ 65 पेज पर अभी 64 पहले देख लो वहाँ पांच मनोयोगी वचन योगी जी में सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर काल नहीं बताया था और अनुत्कृष्ट के लिए एक समय से अंतर्मूर्त बताया था
वो नहीं होता।
तो एक समय से अंतर्मूर्त कब होता है उसी योग में रहते हुए उसी योग में रहते हुए योग में की बात नहीं योग की बात चल रही है। अभी किसी मनोयोग में है तो पहले समय में अनुत्कृष्ट का था फिर उत्कृष्ट बांधने लगा और फिर अंतिम समय में जाके फिर अनुत्कृष्ट हुआ तो अनुत्कृष्ट का अंतर हो गया एक समय से अंतर में।
ये समझ नहीं आया अनुत्कृष्ट जगत अंतर एक
उत्कृष्ट कोई भी कर सकता है संगी पंच नियम मिथ्या दृष्टि मनोयोग में है।
हाँ बराबर है
मनोयोग शुरू हुआ तब उसका अनुत्कृष्ट बंध चल रहा था फिर उसने उत्कृष्ट बंध किया एक समय के लिए किया फिर अनुत्कृष्ट हुआ तो अनुत्कृष्ट का एक समय अंतर हुआ और उसने मनोयोग का जितना काल है पहले समय में और अंतिम समय में अनुत्कृष्ट किया बीच में उत्कृष्ट रहा तो अनुत्कृष्ट का अंतर मनोयोगी के लिए कितना हुआ अंतर्मूर्त हुआ परंतु उसका रीजनिंग उन्होंने जो विशेषार्थ में बताया था वो उन्होंने उपशम श्रेणी में ग्यारहवें में घटित किया वो गलत है इसलिए हमने यहाँ पर तीन चार दो लाइन निकाल दी थी। देखो विशेषार्थ में जो लिखा था ना चौथी लाइन और उपशम श्रेणी पर चढ़कर और पुनः उतरकर विवक्षित योग में अनुत्कृष्ट स्थितिबंध करता है उसके अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतर उपलब्ध होता है ये इतने लाइन हमने काट दी थी क्योंकि ग्यारहवें में भी उसका पलटना होता है योगों का उसी योग में नहीं रहता और इसके लिए हमने वहां पर 74 पेज का रेफरेंस लिखा था अजघन्य का अंतर नहीं होता ये हमने वहां पढ़ा अभी अभी वैसे अनुत्कृष्ट का अंतर तो होगा परंतु वहां उसी योग में रहते हुए होगा
यानी
अजघन्य का अंतर यहाँ कैसे हम घटित करते हैं
एक ही योग में रहते हुए
देखो देखो जघन्य तो दसवें में है परंतु उत्कृष्ट तो मिथ्यात्व में है तो मिथ्यात्व में रहते हुए उसके एक ही योग के रहते हुए वो उत्कृष्ट हुआ अनुत्कृष्ट हुआ संभव है परंतु जब जघन्य कहाँ होता है
तो
क्षपक दसवें में होता है
तो उसका तो अंतर नहीं
तो अन्यत्र अजघन्य का जब योग की अपेक्षा नहीं थी तो अजघन्य का अंतर हम ग्यारहवें की अपेक्षा एक समय से अंतर्मूर्त कहते थे परंतु यहाँ योग की अपेक्षा है तो उसमें तो ये बात घटित नहीं होती क्योंकि वो ग्यारह में गया मान लेते किसी भी योग में उसने एक समय के लिए जो कुछ किया यानी दसवें के अंतिम समय में उसका वचन योग शुरू हुआ उसने बंद किया वो अनुत्कृष्ट था उसका भले योग रहा ग्यारहवें में, फिर वो वचन योग से मनोयोग, वचन योग का योग सब पलटना हो गया, तो उसी योग के रहते हुए फिर संभव नहीं है। इसलिए यहाँ जघन्य का भी अंतर नहीं और अजघन्य का भी अंतर नहीं कहा, क्योंकि हमें ऊपर श्रेणी में तो ये बात नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि के वो तो बात घटित होती थी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के लिए, यहाँ वो अजघन्य के लिए घटित नहीं होगी। इसी प्रकार क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए, वो भी पलटते रहते हैं अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में, और उसका जघन्य कब होगा? शपथ
शपथ से।
और अजघन्य कब होगा? क्रोध के रहते हुए अजघन्य अजघन्य होता रहेगा, उसका अंतर नहीं होगा,
नहीं होगा। ग्यारहवें की अपेक्षा वो अंतर नहीं लेना,
क्योंकि वो तो नब्बे तक ही क्रोध है ना। तो इतनी विशेषता है कि लोभ कषाय में मोहनीय का भंग ओघ के समान है। लोभ कषाय तो दसवें तक है और मोहनीय का जघन्य तो शपक में है,
तो
उसका अंतर नहीं होगा।
अजघन्य का अंतर होगा,
वो जघन्य का अंतर होगा,
कि
नब्बे गुणस्थान में उसने बंधक किया था, दसवें बंधन नहीं था,
मर गया,
तो बंध एक समय में मर कर गया, देव में बंध होने लगा एक समय, और पूरे में रहा
क्रोध वाले लोक का काल जितना है उसमें अंतिम समय
अंतिम समय में मरा। मरना तो आवश्यक है, ऊपर चढ़ा गया तो लोग मार्गना नहीं रहती है,
देव में उत्पन्न हुआ।
हाँ, तो वहाँ एक समय से अंतर्मूर्त घटित होगा, वो के समान कर दो तो एक समय से अंतर्मूर्त। दसवें में मरण की अपेक्षा, यानी एक समय में मरा या अंतर्मूर्त में मरा, क्योंकि ग्यारहवें में जाता है तो उसकी लोभ कषाय वाली मार्गणा नहीं रहती। यहाँ पर भी लोभ कषाय था, देव में भी लोभ में उत्पन्न हुआ, इस तरह से ले सकते हैं। विशेषार्थ लोभ कषाय दसवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए इसमें ओघ के समान मोहनीय कर्म के अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त घटित हो जाता है, यानी दसवें का काल दसवें के अंतिम समय में मरा, इस तरह से ले सकते। शेष कथन सुगम है। अब मनोयोगी वचन योगी हो गए काय योगी जीवों में, सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर ओघ के समान है। अब देखो यहाँ हमारी मार्गणा काय योग वाली है, तो जघन्य क्षपक श्रेणी में होगा, उसका अंतर नहीं होगा। इस योग में भी जघन्य का अंतर नहीं कहा था, अजघन्य का अंतर कहाँ होगा?
काय योग में तो वो श्रेणी में होगा, पर वो श्रेणी में पलट जाएगा ना।
ना 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 ना, पलट कैसे जाएगा? देखो देखो, अभी उपशम श्रेणी में उसने जघन्य का अंतर किया,
काय योग में
अजघन्य का अंतर किया। काय योग में था, कौन से काय योग में था?
औदारिक
काय योग में था, मर गया।
और औदारिक काय
कारमान काय होगा, वैकृत मिश्र हुआ, वो काय योगी के भेद है ना।
एक समय से अंतर,
एक समय से अंतर। मनोयोग वचन योग में वो नहीं हुआ,
नहीं
था,
हुआ काय योग,
काय योग में होता है। क्योंकि वो मर मिल जाता है वहाँ पर, तो अपर्याप्त में उसका वचन योग मनोयोग नहीं था, वो बात
तो काय योग रहता है,
काय योग में बन जाती है। अब औदारिक काय योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर काल मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों के समान का अर्थ होते अंतर नहीं है। जघन्य का भी अंतर नहीं है क्योंकि वो तो क्षपक में होता है, अजघन्य का भी अंतर नहीं है
मरण के अपेक्षा,
क्योंकि
औदारिक काय योग पलट,
औदारिक काय पलट जाता है। दूसरी बात, उसी काय योग के रहते हुए पूरा ग्यारहवा गुणस्थान नहीं हो सकता उसका। तथा आयु कर्म का भंग उत्कृष्ट के समान है।
काय योग में आयु का,
देखो देखो, अभी हमको जघन्य की बात करना है। उत्कृष्ट के समान है, एकेंद्रीय के समान जो बताया था वैसा होगा। आयु कर्म का जगह नहीं, कहाँ योग है, बस इतनी बात है।
तो ये औदारिक का योग की बात चल रही है ना,
औदारिक का योगी की बात ली क्या उन्होंने? हाँ, तो औदारिक का योग में जघन्य बंध किया, तो जघन्य का जघन्य एक समय कम कायोग का कायोग रहा नहीं, कायोग का पहले लेते हैं फिर औदारिक कायोग का लेते हैं। औदारिक कायोग में लेना है तो औदारिक कायोग में सॉरी अकेले कायोग में
तो वो हो जाएगा,
तो जघन्य का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुद्र हो, और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर
पल्ले का अंतर नहीं, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर पल्ले का अंतर क्या?
हाँ, क्योंकि कायोग में लगातार रहा है तो एक इंद्रिय में रहा। अब औदारिक काय योग में लेना है हमको,
नहीं होगा
औदारिक काय योग में
अजगन्य का अंतर्भूत और उत्कृष्ट
अजगन्य के लिए उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर साधिक 22,000 वर्ष नहीं, फिर औदारिक काय योग नहीं रहेगा उसका, बीच में औदारिक मिश्र हो जाएगा,
साधिक 7,000 वर्ष।
हाँ, एक ही भाव लेना,
हाँ एक ही भाव लेना है, और दो दो अवकर्ष के बीच में अंतर्भूत ले सकते हैं जगन्य के लिए, जगन्य का जगन्य अंतर अंतर्भूत और उत्कृष्ट अंतर साधिक 7,000 वर्ष
बराबर औदारिक काय योग के लिए। देखो हमने देखा था 71 वो तो एक इंद्रियों में लिया था, एक इंद्रियों के समान लिया था,
इकाइयों की बात वहाँ पे नहीं होगी,
एक इंद्रियों के समान बात होगी ना वहाँ पर,
नहीं पर एक इंद्रियों में तो हम लोग कायों पर औदारी कायों की बात कठित नहीं होगी।
हाँ, तो उत्कृष्ट कोई बात निकालो,
वो भी एक इंद्रिय सामान्य में लिया था, सामान्य में लिया था ना,
हमारी कौन सी बात है काय योगी वाले की है ना,
नहीं अभी हम लोग औदारिक काय योग की बात कर रहे।
हाँ, वो देखो ना पेज नंबर 64 पर औदारिक काय योगी में जघन्य का अंतर नहीं होगा, मिश्र में चला जाएगा ना, पेज नंबर 64 पर, और वहां पर उत्कृष्ट का अंतर नहीं बताया था,
जगन्य अंतर उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर साधिक 7,000 है,
औदारिक कायोगी में मैं पूछ रही हूँ।
हाँ, औदारिक कायोग में एक ही भाव में दो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अंतर कितना ले सकते हैं?
अरे पर उत्कृष्ट का बंद एक ही बार होगा ना, अनुत्कृष्ट को ले सकते हम,
औदारिक कायोग में उत्कृष्ट का तो अंतर ही नहीं होगा, अनुत्कृष्ट का अंतर होगा,
अनुत्कृष्ट का अंतर होता है तो दो अपकर्ष के बीच होता है,
तो अंतर्भूत
और उत्कृष्ट अंतर साधिक 22,000 वहाँ लिया था तो वहाँ तो
साधिक 7,000 अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर साधिक 7,000 ले सकते हैं ना,
काय योगी में दो भाव लिए थे और औदारिक में साधिक 7,000 वर्ष लिए, ऐसे यहाँ उत्कृष्ट में ऐसे दोनों को साथ साथ लिया था ना, ऐसे यहाँ लिया, फिर से काय योग में लेना है तो काय योग में जघन्य आयु बांधी तो अर्लीस्ट दोबारा बांधी तो एक समय कम क्षुद्र भव, और काय योग में रहते हुए जघन्य आयु बांधी
उत्कृष्ट
तो दोबारा, पर ये उत्कृष्ट के समान क्यों कहा थी? क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट आयु बांधी तो वो चला जाता है को पूर्व कोटि में, इसलिए उसको नहीं लिया था, पर यहाँ जघन्य में जघन्य का उत्कृष्ट अंतर हम
पल्ले का संख्या तो भागी लेगा
पड़ेगा, हम्म, एक इंद्रिय के समान पल्ले का संख्या तो भाग जघन्य का उत्कृष्ट अंतर, और जघन्य अजघन्य का भी लेना है, अजघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर काय योग में रहते हुए साधिक 22,000 वर्ष, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर है ना, क्योंकि देखो बाकी जो जीव है द्विंद्रियाधिक वो जघन्य बंद करेंगे, परंतु उनमें योग पलटेगा और कायम योग किस में रहता है, तो एक इंद्रिय में रहता है। तो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर दो भवों में लेना है तो साधिक 22,000 वर्ष हो जाएगा। अब औदारिक मिश्र का योगी जीवों में 7 कर्मों का भंग उत्कृष्ट के समान है, यानी औदारिक मिश्र में जघन्य करना है ना अभिबंध, तो जघन्य किया औदारिक मिश्र में जघन्य करने वाला
पहले समय में 7 कर्मों के लिए
पहले समय में क्यों लेना,
कहाँ पे भी ले सकते हैं,
उसकी भी विशुद्धि ज्यादा उसमें होगी ना, निवृत्ति पर्याप्त की होगी। औदारिक मिश्र में अंतर ही नहीं है कहा,
तो अंतर नहीं होगा ना, क्योंकि औदारिक
क्योंकि निवृत्ति पर्याप्त के अंतिम समय में उत्कृष्ट करेगा या जघन्य करेगा, यानी उसका अंतर नहीं है। तथा आयु कर्म का भंग मनुष्य अपर्याप्तकों के समान है, औदारिक मिश्र में आयु बांधने वाले लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, वो जघन्य आयु बांधेंगे दोबारा एक समय कम एक भव लेना और लंबे काल तक अनेक भव लेना, वो भी अंतर्मूर्त होगा। फिर से एक भव या उनकी काय स्थिति कितनी अंतर्मूर्त की है, वैक्रिक कायोगी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है, ऐसा है कि एक बार जघन्य किया तो जघन्य करके अंतर्मूर्त के अंतर से फिर दोबारा जघन्य कर सकता है, परंतु ये योग का इतना लंबा काल नहीं है कि दो बार जघन्य हो जावे। अजघन्य हो सकता है कि पहले समय में अजघन्य था फिर जघन्य किया और फिर अजघन्य किया, ये हो सकता है, पर जघन्य का अंतर नहीं होगा। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी जो योग का अंतर्मूर्त है उसके पहले समय में अजघन्य था, बीच में जघन्य किया, अंतिम समय में फिर अजघन्य किया, ये हो सकता है, पर ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, पहले समय में जघन्य किया और फिर बीच में अजघन्य हुआ और फिर जघन्य, ऐसा नहीं, यानी इतना छोटा अंतर्मूर्त नहीं होता है उसका। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वैक्रिक का योगी है तो उनके तीनों योगों में पलटना होता है, तो एक ही योग के रहते हुए दो बार आयु बंधे ऐसा भी कभी नहीं होगा, और जघन्य का तो अंतर नहीं होता, वो तो लास्ट में जाके आयु बांधेगी तब जघन्य कहलाएगी। हाँ, इसी प्रकार आहार कायोगी जीवों के जानना चाहिए, यानी आहार कायोग का भी अंतर्मूर्त अंतर है उसमें भी,
एक समय से अंतर्मूर्त हो जाएगा।
हाँ, और जघन्य के लिए एक समय से अंतर्मूर्त
और बाकी का अंतर
नहीं। हाँ, जघन्य का अंतर्मूर्त नहीं होगा। वैक्रिक मिश्र का योगी जीवों में 7 कर्मों के और आहारक मिश्र का योगी जीवों में 8 कर्मों के, वैक्रिक मिश्र में आयु नहीं बनती, यहाँ आहारक मिश्र में आयु का बंध स्वीकार है, तथा कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में 7 कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है। एक तो वैक्रिक मिश्र की बात करते हैं, वहां 7 कर्मों का जघन्य कब होगा, तो अंतिम समय में होगा, शरीर पर्याप्ति के पूर्व समय में, फिर दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है। जैसे उत्कृष्ट बंध होता है निवृत्ति अपर्याप्त के अंतिम समय में, वैसे यहाँ पर भी लेना।
श्रेणी में मरण की अपेक्षा जो जगह
किसको, वैक्रिक
नहीं बेटरी एक मिश्र का योग में आया श्रेणी में वर्ण की अपेक्षा उसका जगन्य बंद होगा कि वैक्रिक मिश्र में कहाँ पे थी क्या असंगी से आया होता है
असंगी से आए हुए केवल विग्रह गति में जगन्य होता है मिश्र में नहीं होता
तो यहाँ पे
मिश्र में तो अंत कोड़ा कोड़ी का ही होगा पंचेंद्रिय के योग्य ही होगा
तो जो श्रेणी में वर्ण होता है उसका वैक्रिक मिश्र का योग में अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा ना
अंत कोड़ा कोड़ी हो ही जाता है अगर वहाँ जगन्य लेते तो फिर उसका फिर दोबारा जगन्य होना भी संभव नहीं है अंतिम समय में लेते तो भी क्योंकि उसका स्वामी देख लो ना वैकिरिक मिश्र में स्वामी देख लो कितना है 44 वैकिरे की विषय तदरंत समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा है न इसलिए वहां पर उसका अंतर नहीं होगा अभी हम कार्मण का युग की बात करते हैं हो गया अपना कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में सात कर्मों के जगन्य और अजगन्य स्थितिबंध का अंतर काल नहीं होगा क्योंकि जगन्य कौन करेगा
कार्मण का योग तो एक ही इंद्रिय करेगा
हाँ एक इंद्रिय करेगा
बादर एक इंद्रिय
पर्याप्त
पर कार्मण का योग कर लग जाएगा
नहीं पर बादर पर्याप्त है ना बादर एक इंद्रिय पर्याप्त है उसके तो तीन समय नहीं लगेंगे और ऐसा भी नहीं बीच में करके फिर वापस लौटेगा ऐसा भी नहीं है इसलिए उसका अंतरकाल नहीं बता हाँ 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 ओमकार अभी हम रुकते हैं यहाँ पर अनाहरक में ऐसे कार्मण का युग के समय जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ अश्विन
नमो हरि ओंकार नमो पिता नमो राजा नमो ज्ञान नमो